समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, खुशी के मेल से आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि खुशी ही जीवन का आधार है। हम कहते हैं कि यदि खुशी की खुराक हम खाएं तो सचमुच जीवन बहुत आनंदित रहता है, फिर हमें किसी और दवा की आवश्यकता नहीं रहती। तो आज कुछ ऐसे मेल्स हमारे पास आए हैं जो खुशी से भरे हुए हैं, और मैं आपको आज वो खुशनुमा मेल पहले सुनाना चाहूंगा। ये शुरुआत करते पहले मेल से आशा जी ने हमें मुंबई से भेजा है मित्रों ये, और ये कहती है कि मुझे पैरालिसिस था जिससे मैं बहुत परेशान रहा करती थी। अपने छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती थी। जैसा भ्राता जी बताते हैं, मैंने मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस की, ब्रेन को और शरीर को एनर्जी दी, साथ ही दिल से परमात्मा को याद करके मेडिटेशन भी किया। अब मैं 50 से 60% तक बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आदरणीय सूरज भाई जी का, पीस ऑफ माइंड चैनल का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा जी, आपको भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। मित्रों, दूसरा मेल हमारे पास तरुण ने भेजा है, और ये कहते हैं कि मैंने 12वीं के एग्जाम में सिर्फ 90% एक्सपेक्ट किया था, लेकिन राजयोग के अभ्यास से मैंने 97% अंक अर्जित किए हैं। मैंने वो सभी प्रैक्टिसेस किए थे जो भ्राता जी लगातार समाधान प्रोग्राम में विद्यार्थियों को बताते हैं। मैं भ्राता जी को और समाधान टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तरुण, आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मित्रों, तीसरा भी मेल हमारे पास आया है उर्वशी ठाकुर का, हिमाचल प्रदेश से। ये कहती हैं कि बहुत समय से मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं परेशान रहा करती थी। समाधान देखा और 21 दिन योग की भट्टी की, और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब मिल गई है। मैं भ्राता जी का और समाधान टीम का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में आपने मेरा हौसला बनाए रखा और मेरा मार्गदर्शन किया। और वैसे आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कितने सुंदर मेल्स हैं ना मित्रों, कितने खुशी के समाचार हैं कि यदि जीवन में ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं हमारे साथ होती हैं, या हम कुछ योग का अच्छा अभ्यास करते हैं और उसके बाद हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो सचमुच मन आनंदित होता है। अध्यात्म में, ईश्वर में हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। तो ये इन्हीं खुशी के मेल्स के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
बड़े ही खुशी भरे समाचार आज प्राप्त हुए थे मेल में भ्राता जी, मुझे लगा कि आज अपने सभी दर्शकों के साथ खुशियों को बांटा जाए।
आशा बहन को तो नया जीवन ही मिला।
जी जी।
और ऐसे नए जीवन के संसार में बहुतों को तलाश है, न केवल पैरालिसिस के कारण, लेकिन और भी कई चीजें हैं। संबंधों पर टकराव भी आजकल मृत्यु से कम नहीं है, बहुत भारी करता है जीवन की यात्रा को। तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से, बहुत एकाग्रता के साथ, विश्वास के साथ इन अभ्यासों को करता है, तो चाहे एग्जाम में मार्क्स लेने की बात हो
जी जी।
चाहे जॉब मिलने की, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट, तीनों ही मार्वलस। तो सच्चे दिल से और कॉन्फिडेंटली करें
जी,
तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमें आशातीत सफलता न मिले। तो इन सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं समझता हूँ कि सभी को इससे प्रेरणा मिलती है बहुत अच्छी। जॉब तो एक ऐसी चीज है ना कि मनुष्य जॉब न मिलने से कितना हताश और निराश रहता है, ये हम उन युवकों को देखकर समझ सकते हैं जो हमारे पास आते हैं कि 5 साल हो गए, बीटेक किया हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, परिवार वाले भी दुखी हैं, ताने भी सुनने पड़ते हैं। सचमुच अगर मनुष्य का ऐसा सुंदर अभ्यास हो तो राजयोग हर बात का समाधान है।
बिल्कुल बिल्कुल। कहता जी, आपके पास भी ऐसे कुछ सुंदर अनुभव लगातार आप कहते हैं कि लोगों के फोन भी आते हैं, चलते फिरते भी मिलते रहते हैं, तो रिसेंटली कुछ ऐसा सुंदर सा अनुभव आया?
अब मैं, जैसा मैंने कहा कि मुझे, मैं नोट नहीं करता इसलिए, और बहुत लोग मिलते हैं तो साथ साथ वो चीजें भूल जाती हैं, पर रोज एक दो सुंदर अनुभव आते हैं लोगों के, सुंदर बिल्कुल, जिनको सुन के दिल खुश हो जाता है। जब हम उनसे पूछते हैं कैसा है तुम्हारा जीवन, बहुत सुंदर, नो कंप्लेंट। आज भी दो आई माताएं, जब उन्होंने ये कहा सब कुछ बहुत सुंदर है, मैंने कहा ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो।
जी, जी,
तो ऐसे अच्छे सफलता के अनुभव तो आते ही रहते हैं, और बिल्कुल, जो जैसे मैंने कहा कि विश्वास और एकाग्रता के साथ अगर कोई करे तो कोई ऐसी बात ही नहीं जो परिणाम न मिले।
बिल्कुल, मैंने आज कुछ जो मेल्स आए हैं ब्रता जी, उनमें से अनुभवों वाले मेल्स को मैंने बिल्कुल संग्रहित किया हुआ है, और क्योंकि बहुत खुशी हो रही थी इन सबको देख के, तो मुझे लगा कि एक एक करके मैं लूं, लास्ट में वो अनुभव मैं सुनाऊंगा। लेकिन एक और मेल ब्रता जी हमारे पास तेजल ने भेजा है गुजरात से। ये कहती है कि मुझे प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम देने में बहुत डर लगता था। मैं फोरेंसिक साइंस में सेकेंड ईयर में हूँ। इस बार एग्जामिनेशन हॉल में जब गई तब बहुत अच्छा मेडिटेशन करके गई, एक्सटर्नल एग्जामिनर को आत्मिक दृष्टि से देखा और दृष्टि दी। इसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया, एग्जामिनर ने मुझसे वही प्रश्न पूछे जो मुझे परफेक्टली आते थे। जब मैंने आंसर दिया तो उन्होंने बहुत तारीफ की और वायवा में मुझे अंक भी बहुत अच्छे मिले। समाधान में स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल टिप्स भ्राता जी देते हैं वो बहुत उपयोगी हैं। मैं आगे भी अच्छा मेडिटेशन करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेडिटेशन की पावर से मैं जो चाहे वो हासिल कर सकती हूँ। थैंक यू समाधान। ये तेजल गुजरात से इन्होंने अनुभव भेजा है।
बहुत अच्छा, ये भी क्योंकि छोटी आयु में इंटरव्यू देते, वाइवा देते, मनुष्य घबराए नहीं, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे चाहे वो कहीं भी हो, एमएससी कर रहे हो और हो रहा हो कुछ, तो घबराहट पहले होती है और वो घबराहट सब कुछ भुला देती है। तो अच्छी बात है और ये सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए, जब भी वाइवा दें, इंटरव्यू देने जाएं, तो ऐसे ही योग अभ्यास करके जाएं। दृष्टि देने की विशेष बात इन्होंने कही है, ये सचमुच बहुत ही सुंदर बात है। बाबा बहुत समय पहले से ये बात सिखाते आए कि तुम्हारी दृष्टि में बहुत प्रभाव है, और अलौकिक दृष्टि यानी आत्मा देखकर यदि तुम दृष्टि देते हो तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो जाता है। बाबा कहा करते, तुम्हारा अधिकारी अगर तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा है तो आत्मा देखकर उसे दृष्टि दो, फिर बात करो, क्योंकि तुम्हें छुट्टी चाहिए, कहीं बहुत जरूरी जाना है और उनको काम कराना है, जरूरी है आपको रखना, वो देना नहीं चाहते, लेकिन अगर दृष्टि देकर अपनी एप्लीकेशन दी जाएगी तो सचमुच वो हाँ करेंगे। तो ये दृष्टि की बात भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा साहस होना चाहिए, नहीं तो लोग सोचते हैं वो एग्जामिनर है और कहीं
घबरा जाते हैं,
कहीं कुछ नहीं, वो ये भी सोचते हैं कहीं ये गलत ना समझ ले तो खेल बिगड़ जाए। तो लेकिन आत्मिक दृष्टि में सचमुच मेरे को लस इफेक्ट है।
जी जी जी, तो ये जो दृष्टि देने वाली बात है बेटा जी, वो क्या मतलब, उनकी आंखों से आंखें डाल के देखा जाए या उनकी आत्मा को देखा जाए?
सीधा सा कुछ भी नहीं, ये आत्मा है, यहाँ बैठी है, चमकती बिंदी है, ज्योति है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। पहले से ये तैयारी करके जाए, जस्ट फॉर 2-3 सेकंड्स आत्मा देख ले उन्हें, तो हमारी दृष्टि उनको चली जाएगी और इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव होगा।
जी जी जी, प्रति जी गोमती जी ने छत्तीसगढ़ से एक अनुभव हमारे पास भेजा है। ये कहती हैं कि पहले मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते थे, मुरली भी सुनने नहीं देते थे और खान पान के लिए भी टोकते थे। मैंने 21 दिन विघ्न विनाशक योग भट्टी की तो अब पति भी सहयोगी हो गए हैं और घर वाले भी मुझसे बहुत खुश हैं। तो इन्होंने भी पूरे समाधान टीम को बहुत शुक्रिया अदा किया।
आज के तो आपके मेल सचमुच सबके लिए बहुत,
जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छे अच्छे,
क्योंकि ये विशेष करके ये जो केस है ये बहुत आते हैं कि भाई घरों में संघर्ष रहता है, ज्ञान मार्ग पे हम चलते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता हमारा सात्विक भोजन खाना, हमारी प्योरिटी का लोग विरोध करते हैं, लेकिन 21 दिन योग का अभ्यास करने से ये सभी के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और जिन जिन के घरों में ऐसी समस्याएं हों, जो सबको सहयोगी बनाना चाहते हों, अपने घर में प्यार का माहौल पैदा करना चाहते हों, वो इस तरह के अभ्यास अवश्य करें।
बिल्कुल, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक और मेल है ब्रता जी हमारे पास, ये भी बहुत ही प्यारा सा है। कोमल रावल जी ने मुंबई से भेजा है और इन्होंने लिखा कि मेरी एक्टिवा चोरी हो गई थी, मैंने पुलिस में केस भी दर्ज किया लेकिन 4 महीने हो गए कोई नतीजा नहीं मिल रहा था, तो मैं भी हताश हो गई थी। फाइनली जैसा आप समाधान में बताती हैं, मैंने इस समस्या को प्रभु को अर्पित कर दिया कि अब आप संभालो, और थोड़े ही दिनों के बाद मेरे पास कॉल आया कि आपकी एक्टिवा मिल गई है। बिल्कुल वो परफेक्ट कंडीशन में थी, जीवन की हर समस्या का समाधान देने वाली, समाधान प्रोग्राम का, सूर्य भाई जी का, पीस ऑफ माइंड चैनल का, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ, ये समर्पण भाव भी बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि मनुष्य अपने लेवल पर प्रयास करता रहता है, लेकिन कुछ चीजें ये संभव है ऐसी हों जो हमारी शक्तियों से बाहर की हों, ऐसे में हमें उसे प्रभु अर्पण कर देना चाहिए। और अर्पणता ऐसी हो कि बस वो दिलाए तो भी ओके, न दिलाए तो भी ओके, उसके बाद चाहिए निश्चिंत जीवन। समर्पण भाव के बाद यदि निश्चिंतता होती है तो रिजल्ट वही आता है जो हमारी इच्छा या आवश्यकता थी
जी।
इसलिए ये बहुत सुंदर अनुभव है और बहुत सारी बातों को हम समर्पित करके चलेंगे तो फिर शिव बाबा एक्टिव हो जाता, ऑल माइटी एक्टिव हो जाता है, पुलिस को पता नहीं चल रहा है एक्टिवा कहाँ है, शिव बाबा को तो ऊपर से दिख रहा है कि वहाँ खड़ा है इस रंग का,
बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिल जाएगी, बड़ी अच्छी बात है।
कुछ भी हाँ,
अदरवाइज वो चक्के वक्के निकाल के कहीं रख देते
हैं। बहुत अच्छा अनुभव, इनको बहुत बहुत बधाई।
चलिए बेटा जी, ये जो एक बात है, चलिए जैसे इन्होंने कहा कि भाई सब चीजें इन्होंने कर ली, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया तो ईश्वर को अर्पित किया, तो ज्यादातर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर को अर्पित करना या थक हार के कि चलो भाई कुछ हो नहीं रहा अब तो ही कुछ कर ले, तो ये वाली बात कई बार ऐसा लगता है कि भगवान को हम लास्ट में क्यों याद करते, पहले क्यों?
ये एक बात है, जैसे मेडिकल में भी ना, पहले लोग जाएंगे एलोपैथी के पास, बहुत कर लिया नहीं कुछ हो रहा, खर्च भी हो गया, फिर चलो आयुर्वेदिक को दिखाओ, वहां भी कुछ नहीं हो रहा तो होम्योपैथी को दिखाएं, और लास्ट में जाते हैं नेचर क्योर वालों के पास, भाई तुम अब कुछ करो, वहां से ठीक हो जाता है क्योंकि अब वो भोजन भी ज्यादा नहीं खाने देते तो अंदर का सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, पूरा शांत हो जाता है, तो शरीर में ये अंदर ही पावर है कि वो अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक करने में सक्षम है, लेकिन हम उसे बिजी रखते हैं बहुत। तो ऐसे ये है कि भगवान की ओर भी लोग लास्ट में देखते हैं, पहले मनुष्य जाएगा पुलिस के पास और उसे जाना भी चाहिए, फिर अपने ढंग से वो प्रयास भी करेगा, फिर जब हाथ थक जाता है भाई कोई कुछ करता नहीं है, चलो तुम्हारे हाथ में नहीं आ, अब तुम इसको पार लगा दो, है ये मनुष्य की मेंटेलिटी यही है। लेकिन जो श्रेष्ठ योगी है वो पहले से ही समर्पण भाव अपनाकर चलते हैं
जी।
सब कुछ तेरा, ये समस्याएं भी तेरी, हमारी जीवन नैया भी तुम्हारे हाथों में, अब तुम जैसे इधर चलो, हमारा जीवन ही तुम्हारा, तुमको अर्पित। तो जब पहले से ये भाव हम लेकर चलते हैं तो फिर लास्ट में ये बात याद नहीं आती, पहले ही याद आ जाती है।
लेकिन एक बार जैसे आपने कही ना व्रता जी कि हम उन्हें अर्पित करें उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएं कि ठीक है मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, अब तेरे हवाले। लेकिन ज्यादातर लोगों की कामना ऐसी रहती है तुम्हें सौंपा तो मिलना ही चाहिए, ये वाली कामना ज्यादा
हाँ,
रहती है।
ये कामना थोड़ा हमें कमजोर कर देती है
जी।
ये सोचने के बाद भी संकल्प चलेंगे, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा, इसलिए जब समर्पण भाव यहाँ पहुंच जाए कि जो तुम करो हम उसमें राजी हैं, तो चित्त शांत हो जाता है और तब हमारी मन की शक्ति और परमात्मा शक्ति दोनों मिलके उस कार्य को सफल करते हैं
जी। जी, कईयों के ऐसे मेल्स या फोन कॉल्स आते हैं ब्रता जी, जैसे कल ही मैं एक और मेल देख रहा था, उसमें एक लड़के ने हमें मेल किया था कि मेरी जो 30,000 का जो मोबाइल है वो कहीं गुम हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथियों ने ही, जो मेरे साथ रहते हैं, उनमें से किसी ने ले लिया है, अब मैं उन्हें डायरेक्ट कह भी नहीं सकता, क्या मैं कुछ ऐसी चीज करूं, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करूं जिससे वो चीज मुझे वापस मिल जाए?
बिल्कुल, ये क्या ये चीज है, वो इसको समर्पित भी कर दे शिव बाबा को, अब तुम इसको संभालो इस केस को, और खुद भी बहुत अच्छे अभ्यास करे, चलो एक घंटा नहीं तो आधा घंटा रोज वो योग अभ्यास कर ले स्वमान से, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और देखे कि बस मोबाइल मेरे हाथ में है, वही विजन बनाए, क्लियर आंख खुलते ही, तो बहुत जल्दी 3-4 दिन में ही उसको मोबाइल प्राप्त हो जाएगा।
जी जी जी, चलिए हमारी भी कामना रहेगी, क्योंकि लोग ऐसी जब अच्छी चीज या बड़ी चीज या कीमती चीज कहीं चली जाती है तो उनका सारा ही जो मन है
ये
विचलित हो जाता है।
बिल्कुल नेचुरल है, बात 30,000 की नहीं, उसमें सारे नंबर्स होते हैं, उनमें बहुत सारी उपयोगी चीजें होती हैं, आजकल तो इन चीजों पे मनुष्य डिपेंडेंट हो गया ना बहुत, तो ये एक आवश्यक चीज हो जाती है। चलो किसी के पास 30,000 से ज्यादा 30 करोड़ रुपए हो और वो ये भी सोच सकता है छोड़ो 30,000 कुछ नहीं, लेकिन उसमें जो अंदर है माल भरा हुआ खजाना, कीमत तो उसकी होती है।
बिल्कुल बिल्कुल ब्रता जी, आइए अब मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। इनमें से पहला मेल ब्रता जी हमें सुभाष चंद्र जी ने उड़ीसा से भेजा है, और ये कहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ, पहले मैं नॉनवेज खाता था, 6 मास पहले मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आया, तब से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी मुझे नॉनवेज खाने का बहुत मन करता है, अब यदि मैं खाऊं तो क्या ये पाप होगा?
पहली चीज तो ये कि जब मनुष्य किसी चीज को एक बार छोड़ दे तो उसको ऐसा दृढ़ होना चाहिए के छोटी सौ सदा के लिए छूट गई। ये उसकी विल पावर का परिचायक होगा और ये जो क्वालिटी उसके अंदर रहेगी ये जीवन भर उसे काम आएगी, चाहे कोई चीज छोड़ने में चाहे कोई चीज करने में। उसके अंदर इतनी दृढ़ता होगी कि जिस मार्ग पे एक बार आगे चल पड़े फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो इनको पहला तो ये दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए, जो चीज एक बार छोड़ दी वो सदा के लिए छोड़ दी। दूसरा, अब इनको ये अच्छी तरह रियलाइज हो ही गया होगा, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ। और ये दोनों ही जो रियलाइजेशन है ये नॉन वेज को स्वीकार नहीं करने देंगे, इसलिए बात पाप और पुण्य की नहीं। अब इन्होंने सात्विक जीवन अपना लिया है, राजयोग के पथ पर इनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर ये खा भी लेते हैं तो उसके बाद इन्हें जो आत्मग्लानी होगी, जो पश्चाताप होगा, वो बहुत बुरी चीज होगा। इसलिए उससे बचने के लिए और निरंतर आगे बढ़ने के लिए इस धारणा को सदा के लिए कायम रखना है। और फाइनली बस एक संकल्प भी कर लें हमें सुनते हुए ही, कि जो चीज एक बार छोड़ दी, जो बुरी थी वो सदा के लिए छोड़ दी, उसको अब देखना भी नहीं है।
आपने जो ये शब्द कहा ना व्रता जी कि वो बुरी चीज थी वो मैंने छोड़ दी, तो शायद वो बुराई मेरी स्मृति में नहीं रहती कि हाँ उससे क्या नुकसान था, क्या बुराई थी, और वो छोड़ने से क्या अच्छाई है, शायद ये ध्यान में नहीं रहता, इसीलिए बार बार उधर खिंचाव होता है। तो ये चीज कैसे हमेशा अपने ध्यान में,
देखिए अब इनको तो ये बात ध्यान में आई गई क्योंकि ये राजयोग के पथ पर चल पड़े हैं और ये ईश्वरीय आज्ञा है कि तुम्हें सात्विक आहार लेना है क्योंकि तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम बिल्कुल पवित्र हो और तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारी इनर सात्विकता इन चीजों को अलाउ नहीं करती है। जैसे देखो वैसे भी कहीं खून बहने लगे, मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो मनुष्य कैसे देखता है उसे, एक घीनता से, खिन्न भाव से। तो सचमुच ये सबको जान ही लेना चाहिए, ये बहुत बुरी चीजें हैं। ये नॉन वेज आदि लोगों में रॉयल्टी हो गई, फैशन हो गया है, पर ये पाप भी है और बहुत बुरी चीज भी है। और इस पाप का खामियाजा हर एक को भुगतना पड़ता ही है। ये जो आजकल संसार में दुख अशांति बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, मानसिक रूप से मनुष्य बहुत हेल्दी नहीं प्रतीत हो रहा है। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, हम उन्हें ध्यान से देखते हैं कि देखो किसी के भी चेहरे पे तेज नहीं है। अब जब वो यहाँ आके राजयोग सीखते हैं और थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ अपनाते हैं, अपने जीवन को सात्विक करते हैं, तो चेहरों पे तेज आ जाता है। ये हम रोज यहाँ देखते हैं। चार दिन के लिए लोग हमारे पास आते हैं, अभी भी 11,000 लोग हमारे पास थे, आज गए हैं, बहुत सारे जा रहे हैं। हम देखते थे पहले दिन उनके चेहरों पे कुछ और, जैसे चमक नहीं, नूर नहीं, तेज नहीं। आज जब वो जा रहे थे तो उन सब के चेहरे बदले हुए थे। तो एक स्पिरिचुअलिटी अपना ली, एक अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसकी डीप रियलाइजेशन हो गई, मन में खुशी और आनंद की लहर जैसे हिलोरे लेने लगी। तो इसकी बहुत जरूरत है ये बात समझने की कि ये चीजें बुरी हैं और हमारे योग्य नहीं है।
बिल्कुल, मतलब एक दृढ़ता लाई जाए। यदि एक बहुत ज्यादा तलब सी पैदा हो जाए तो क्या एक पावरफुल थॉट अपने पास रखें,
मैं देव कुल की आत्मा हूँ और मुझे हर चीज भगवान को भोग लगाकर ही खानी है, और इसको भगवान स्वीकार करेगा ही नहीं। तो जो भगवान को स्वीकार नहीं वो मुझे भी स्वीकार नहीं।
वाह, बहुत सुंदर है भ्राता जी। मुझे लगता है कि इससे तो सभी उन चीजों से मुक्त हो जाएंगे कि भगवान यदि हमारे पिता यदि नहीं खा रहे हैं, स्वीकार नहीं करना है, तो हमें भी स्वीकार नहीं करना है। अगला मेल भ्राता जी हमारे पास देविका जी ने भेजा है। ये कहती है कि एक मास पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और वो चल बसी। मुझे उसकी बहुत याद आती है, मन में बहुत घबराहट होने लगती है। मन में कई बार सवाल आता है कि इतनी छोटी बच्ची ने ऐसा क्या किया जो भगवान ने उसके साथ ऐसा किया।
देखिए ना, इसमें बच्ची को कुछ करने की बात है, ये तो आत्मा है। आत्मा शरीर में आती है जीवन, शरीर छोड़ती है, इसको मृत्यु कहा जाता है। इसमें एक्चुअली तो भगवान का कोई रोल है ही नहीं। हम भगवान को ये दोष दे ही नहीं सकते कि उसने ये बुरा क्यों किया, और ये एक्चुअली बुरा होता भी नहीं। ये तो माँ बाप को लगता है ना कि उनकी छोटी बच्ची, चलो 10 साल की थी, 11 साल की थी, अभी तो उसका छोटा जीवन था, उसको पढ़ना था, वो बहुत स्वीट थी, बहुत लवली थी, ये क्या कर दिया। लेकिन कर्मों के खेल के अनुसार ही जन्म और मृत्यु का खेल चलता है। जब कर्मों का खाता सेटल हो जाता है तो आत्मा वहां से चली जाती है। इसलिए ये सोच सोच कर अब इनको दुखी होने की जरूरत नहीं, जब भी उनकी याद इनको आएगी तो जरूर तो ये राजयोग का अभ्यास करके उन्हें गुड वाइब्रेशंस दें, क्योंकि वो आत्मा चली गई है, वो वापस नहीं आ सकती है। कोई दुखी हो, रोए चिल्लाए, परेशान हो, भगवान को गाली दे या उसे छोड़ दे, उसको याद ही न करे, कह दे हम तुम्हारे मंदिर में आज से जाएंगे नहीं, तुमने हमारे लिए बहुत बुरा कर दिया है, लेकिन वो आत्मा तो वापिस आएगी नहीं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करते हुए जब भी उनकी याद आए उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, इनका मन भी शांत होगा और जहां आत्मा वो गई वो भी शांत होगी। अन्यथा क्या होता है, माँ इधर दुखी होकर याद कर रही ना अपने बच्चे को, तो वो वहां बच्चा रो रहा है बहुत, और ये हर जगह देखा जाता है, बच्चे इतना रोते हैं कि माँ बाप उनको किसी भी तरह चुप नहीं करा पाते हैं, कुछ खिला पिला के कुछ देकर कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि इधर से दुख के वाइब्रेशंस उनको टच करें, बच्चा तो सेंसिटिव है, वो सब कुछ ग्रहण करता जा रहा है।
जी,
इसलिए इनका ये परम कर्तव्य है, बच्ची से अगर इनका प्यार है, था ही वो तो, फिर भी मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, उस आत्मा से इनका प्यार है तो उसकी सुख शांति और खुशी का ध्यान रखते हुए उसे अच्छे वाइब्रेशंस दें, दुखों के नहीं।
बिल्कुल, कहियों कि ऐसे फोन कॉल आते हैं दादाजी, जैसे किसी ने फोन किया था कि एक छोटी बच्ची थी उनकी, वो छत में खेलते खेलते नीचे गिर गई और असमय उसका अंत हो गया, तो क्या उसको जन्म मिलेगा या वो भटक जाएगी? क्योंकि जैसे कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि यदि असमय देहांत होता है तो आत्मा भटक जाती
है। नहीं, ऐसा इस केस में नहीं हो सकता। बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते गिर गया, इसको एक्सीडेंटल डेथ भी नहीं कहेंगे, ये तो ऐसा होना ही था, उसके साथ उसकी मृत्यु का समय आ गया था, उसको तो जल्दी ही पुनर्जन्म मिल जाएगा। इस केस में भी इनको उसको अच्छे वाइब्रेशंस देने चाहिए ताकि उसका पुनर्जन्म अच्छी जगह हो, तुरंत हो।
बिल्कुल सही। एक और आया ब्रदर जी हमारे पास कि इनकी एक दोस्त की छोटी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया, अब वो परेशान है कि वो क्या भटकेगी या जन्म मिलेगा, और यदि भटकन होती है तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं?
हाँ, देखिए ये तो एक अलग बहुत जबरदस्त प्रश्न है, क्योंकि जब कोई सुसाइड करता है तो उसकी अंतिम स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, और उसी स्थिति में जब वो शरीर छोड़ता है तो पुनर्जन्म के पीछे ये सीक्रेट है कि जिस स्थिति में शरीर छोड़ेगा उसी स्थिति में पुनर्जन्म होगा। अब कईयों की इतनी भयावह स्थिति होती है कि आत्मगर्भ में जा ही नहीं सकती, और जिनको याद कर रही, जिनके कारण दुखी है, उनके वाइब्रेशंस उन्हें अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो इसलिए सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, इसको पुनर्जन्म जल्दी नहीं मिलता। इसके लिए हमारे यहाँ जो लोग ऐसे केस लेकर आते हैं तो शिव बाबा को भोग लगवाया जाता है और स्पेशल योगदान उनको दिया जाता है, ये भी उनके लिए 21 दिन 1 घंटा रोज योगदान कर दें तो उसकी वो दुख की फीलिंग, उसकी वो निगेटिव फीलिंग, निगेटिव एनर्जी जो उसको पुल कर रही है चारों ओर, वो समाप्त हो जाएगी और उसको जल्दी पुनर्जन्म हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम भी कामना करेंगे ब्रदर जी कि ऐसी जो आत्माएं हैं जो तकलीफ में हैं, जल्दी से जल्दी मुक्त भी हों और देह धारण करें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मैंने शुरुआत खुशी की जो मेल्स हैं उनसे की थी, बहुत सुंदर सुंदर समाचार आए थे। हाँ, अंत तक आते आते आज की जो समस्याएं हैं वो तो खैर बहुत विकट हैं, लेकिन आत्महत्या करना ये सचमुच ठीक नहीं है। जैसे ब्रदर जी भी लगातार हमें बताते हैं कि जीवन परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही सुंदर तोहफा है, उपहार है, क्यों ना इसे हम बहुत अच्छी तरह से जिएं। ठीक है, बातें आएंगी, लेकिन आई हैं तो चली भी तो जाएंगी ना। हम जूझना लड़ना सीखें, एक अच्छे योद्धा बने ताकि हम मजबूत हो जाएं। इसीलिए जीवन से भागना वास्तव में कोई एक समाधान नहीं है, लेकिन हम एक समाधान ढूंढें कि क्या रास्ता हो सकता है। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी मेल खुशी के मेल से, वैसे ही अंत भी करना चाहूंगा। ये मेल हमारे पास आया है दीपिका जी का हिमाचल से, और ये कहती है कि मुझे आपको बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि समाधान से मेरा पूरा ही जीवन परिवर्तित हो गया है औरों के जीवन को भी परिवर्तित करने के मैं निमित्त बन गई हूँ। ये कहती हैं कि मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद जीवन ठीक नहीं चल रहा था। चूंकि मैं विद्यालय से पहले भी जुड़ी हुई थी इसीलिए मैं सब कुछ सह रही थी, लेकिन जब मैंने समाधान देखना शुरू किया पीस ऑफ माइंड चैनल में, ये कहती हैं, तब से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया, अपने विचारों में परिवर्तन लाना शुरू किया और अपने परिवार वालों को, अपने पति को अच्छे वाइब्रेशन मैंने देने शुरू किए। और खुशी की बात यह है कि अब पति भी बहुत अच्छे सहयोगी हो गए हैं और पूरा परिवार ही सहयोगी हो गया है और घर का माहौल भी बहुत बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो मैं समाधान परिवार को, पीस ऑफ माइंड चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मित्रों, कितने अच्छे अनुभव हैं और बड़ा सुकून मिलता है ऐसे अनुभवों को सुनकर के। खुशी होती है कि सचमुच ये जो प्रयास है इस मंच के द्वारा जो किया जा रहा है आपके जीवन में खुशहाली ला रहा है और साथ ही साथ आपकी समस्याओं को दूर भी कर रहा है। तो आपके पास भी जो ऐसे सुंदर अनुभव हैं उन अनुभवों को हम तक अवश्य ईमेल के द्वारा, पत्र के द्वारा या फोन कॉल के द्वारा अवश्य पहुंचाइए। ये अनुभव दूसरों को भी बहुत ज्यादा प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं। तो आपका जीवन शांति से, खुशहाली से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान समाधान।